एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान। आज की इस ज्ञान गोष्ठी में हम सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, साहिल ब्लूम की अवधारणा, संपत्ति के पांच प्रकार, मतलब द फाइव टाइप्स ऑफ वेल्थ।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। और देखिए, ये विषय इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई असली दौलत है क्या? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस या बड़ी गाड़ी, बस वही सफलता है? या फिर एक भरा पूरा, संतुलित और संतुष्ट जीवन जीना?
बिल्कुल, हम अक्सर देखते हैं ना कि लोग बाहरी तौर पर बहुत सफल दिखते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये खालीपन महसूस करते हैं।
हाँ,
साहिल ब्लूम इसी स्थिति को कहते हैं अमीर लेकिन गरीब, मतलब वेल्दी बट पुअर।
बिल्कुल,
आज की हमारी चर्चा इसी सीमित सोच को चुनौती देगी और सच्ची दौलत का एक ज्यादा व्यापक, ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण सामने रखेगी।
तो चलिए सबसे पहले उस शख्स के बारे में थोड़ा जानते हैं जिसने ये विचार दिया, साहिल ब्लूम। देखिए, साहिल सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो एक उद्यमी है, निवेशक है और सोशल मीडिया पर भी काफी जाने माने कंटेंट क्रिएटर है।
हाँ।
और दिलचस्प बात ये है कि उनका बैकग्राउंड वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी की दुनिया से है।
अच्छा।
ऑल्टमोंट कैपिटल पार्टनर्स और SRB वेंचर्स जैसी जगहों पर काम करने का अनुभव है उन्हें, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहाँ बेसबॉल भी खेलते थे।
सही बात है।
और यही बात उन्हें खास बनाती है।
बिल्कुल।
उन्होंने पारंपरिक वित्तीय सफलता,
हाँ,
जिसे हम सब शायद सफलता मानते हैं, उसे हासिल किया, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि शायद ये काफी नहीं है।
उन्होंने व्यक्तिगत विकास, जीवन को बेहतर बनाने, मतलब लाइफ ऑप्टिमाइजेशन जैसे विषयों पर गहराई से सोचना शुरू किया और अपने विचार लाखों लोगों के साथ बांटे भी, खासकर अपने न्यूज़लेटर द क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल और ट्विटर के जरिए।
हाँ, मतलब वो सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे, उन्होंने खुद उस तेज रफ्तार वित्तीय दुनिया को जिया है, उसकी ऊंचाइयां भी देखी और शायद उसकी सीमाएं भी महसूस की।
बिल्कुल।
और फिर उन्होंने एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा समग्र, जिसे कहते हैं ना होलिस्टिक जीवन, उसके तरीके खोजे और साझा किए।
सही।
उनका यह अपना सफर ही उनके विचारों को वजन देता है। वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बता रहे, वो खुद उस रास्ते पर चले हैं एक तरह से।
तो अब आते हैं इस अवधारणा के मूल विचार पर। साहिल ब्लूम का कहना है कि सच्ची संपत्ति या दौलत का मतलब सिर्फ नोटों की गड्डियां या बैंक में बड़ी रकम होना वो नहीं है। ये पांच अलग अलग लेकिन एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई पूंजी या धन है।
हाँ, इसे एक पहिए की तरह समझ सकते हैं, है ना, जिसके पांच हिस्से हैं।
हाँ।
और पहिया तभी ठीक चलेगा जब सभी हिस्से मजबूत हों।
सही कहा।
हाँ, और उनका मुख्य तर्क ये है कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति सिर्फ पैसे पर इतना ज्यादा जोर देती है कि हम अनजाने में एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो शायद आर्थिक रूप से तो बहुत आगे बढ़ जाए लेकिन अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस न करे। वो जिसे ट्रू वेल्थ या सच्ची दौलत कहती हैं, वो इन पांच प्रकारों के सामंजस्य से ही बनती है।
अच्छा।
इसी से जीवन में टिकाऊ खुशी, एक मकसद और दुनिया पर सकारात्मक असर डालने की क्षमता आती है।
तो कौन से हैं ये पांच प्रकार, एक बार संक्षेप में जान लेते हैं।
हाँ।
पहला है वित्तीय संपत्ति, फाइनेंशियल वेल्थ, मतलब पैसा और हमारी जायदाद। ये तो खैर सबसे स्पष्ट है।
हाँ, ये तो सब जानते हैं।
दूसरा है सामाजिक संपत्ति, सोशल वेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारा नेटवर्क, हमारे अपने लोग।
बहुत जरूरी।
तीसरा है शारीरिक संपत्ति, हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा, हमारी तंदुरुस्ती,
जीवन की नींव।
बिल्कुल। चौथा है मानसिक बौद्धिक संपत्ति, हमारा ज्ञान, हमारे हुनर, हमारी भावनात्मक समझ,
दिमाग का निवेश।
और पांचवा है समय उद्देश्य संपत्ति, यानी अपने वक्त पर हमारा कितना नियंत्रण है और हमारे जीवन का कोई स्पष्ट मकसद या दिशा है या नहीं।
और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों या करोड़पतियों के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बेहतर करना चाहता है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस करता है कि शायद पैसा ही सब कुछ नहीं है।
सही।
ये उन लोगों के लिए है जो सफलता की पारंपरिक परिभाषाओं से आगे बढ़कर एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा सार्थक जिंदगी जीना चाहते हैं। ये एक तरह से अपने जीवन को नए सिरे से डिजाइन करने जैसा है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं।
बिल्कुल।
ब्लूम अपनी बात की शुरुआत आज के समाज के एक बड़े विरोधाभास से करते हैं। बहुत से लोग जो कागज पर सफल हैं, वो असल में खुश क्यों नहीं है? इसे वो संपत्ति का भ्रम कहते हैं,
द वेल्थ डिल्यूजन
कहते हैं।
ये सवाल उठता है कि ज्यादा कमाने वाले लोग भी अक्सर तनाव, चिंता या खालीपन क्यों महसूस करते हैं?
और ब्लूम का मानना है कि हम दौलत को बहुत संकीर्ण नजरिए से देखते हैं।
हाँ, बिल्कुल। और इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, जैसे एक है हेडोनिक ट्रेडमिल।
हेडोनिक ट्रेडमिल वो क्या है?
इसका मतलब है कि हमें किसी भी नई खुशी की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है, चाहे वो बढ़ी हुई सैलरी हो या नई कार, और हम वापस अपनी पुरानी खुशी के स्तर पर आ जाते हैं।
अच्छा।
फिर और ज्यादा पाने की दौड़ शुरू हो जाती है। दूसरा है तुलना की संस्कृति, कंपैरिजन कल्चर जिसे कहते हैं,
सोशल मीडिया वाली,
पीछे भाग रहे हैं। और वो पांच तरह की संपत्ति का ढांचा पेश करते हैं।
तो आते हैं इन पांच स्तंभों पर एक एक करके। पहला, वित्तीय संपत्ति, फाइनेंशियल वेल्थ। यहाँ सबसे जरूरी बात जो ब्लूम कहते हैं वो ये है कि पैसे को उसकी सही जगह पर रखना जरूरी है। पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है, ये सफर में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण यानी टूल है।
बहुत सही नजरिया है ये। वो कहते हैं कि लक्ष्य दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना नहीं होना चाहिए,
हाँ,
बल्कि स्वायत्तता हासिल करना होना चाहिए। स्वायत्तता यानी अपने समय पर, अपने काम पर और अपने फैसलों पर नियंत्रण पाना।
सोचिए, पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है? शायद अपना समय वापस खरीदना।
बिल्कुल, उन कामों से मुक्ति पाना जो हमें पसंद नहीं, ताकि हम वो कर सकें जो हमें पसंद है।
या फिर जीवन के तनाव कम करना।
और हाँ, बाकी चार तरह की संपत्तियों, सेहत, रिश्ते, ज्ञान, मकसद में निवेश करने के अवसर बनाना।
और इसमें कमाने, जिसे ब्लूम ऑफेंस कहते हैं, और बचाने या निवेश करने, डिफेंस, इनके बीच संतुलन साधना जरूरी है।
हाँ, सिर्फ कमाते जाना काफी नहीं, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है।
और एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछना, मेरे लिए पर्याप्त कितना है?
उफ, ये सबसे मुश्किल सवाल है शायद।
हाँ, ये पर्याप्त की अपनी परिभाषा तय करना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना हम हमेशा और ज्यादा की दौड़ में ही लगे रहेंगे।
पैसे के बाद आता है दूसरा स्तंभ, जो शायद जैसा आपने कहा, पैसे से भी ज्यादा कीमती है सामाजिक संपत्ति, सोशल वेल्थ। ये है हमारे रिश्ते, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा समुदाय। कई रिसर्च ये बताती हैं कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता हमारी खुशी और जीवन की संतुष्टि का सबसे बड़ा कारण होती है।
यहाँ ब्लूम दो तरह के रिश्तों में फर्क करते हैं, एक है व्यापक नेटवर्क्स, ब्रॉड नेटवर्क्स।
गहरे रिश्ते, डीप रिलेशनशिप्स,
हाँ,
हमारे परिवार के लोग, हमारे करीबी दोस्त, वो लोग जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमारे सुख दुख में साथ होते हैं।
हाँ, और यहीं पर सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी का विचार आता है। साथ ही कमजोर कड़ियों की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज का सिद्धांत भी दिलचस्प है। कई बार नए अवसर हमें अपने बहुत करीबी दोस्तों से नहीं, बल्कि दूर के जानकारों से मिलते हैं।
अच्छा।
और पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी यानी लेन देन का सिद्धांत, रिश्तों में देना और लेना दोनों जरूरी है। ब्लूम जोर देती हैं कि हमें सच्चे रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने में ठीक उसी तरह समय और ऊर्जा लगानी चाहिए जैसे हम पैसा निवेश करते हैं।
सही।
वो इसे अल्टीमेट मल्टीप्लायर कहती हैं, क्योंकि अच्छे रिश्ते हमारे जीवन के हर पहलू, हमारी सेहत, हमारे करियर, हमारी मानसिक शांति को बेहतर बनाते हैं। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, शारीरिक संपत्ति,
फिजिकल वेल्थ,
हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती,
जीवन की नींव।
हाँ, इसे ब्लूम जीवन की नींव कहते हैं। सोचिए, अगर नींव ही कमजोर हो तो उस पर इमारत कैसे खड़ी होगी?
बिल्कुल।
हमारी ऊर्जा का स्तर, हमारी उम्र की लंबाई और हमारी शारीरिक क्षमता का सीधा असर हमारे काम करने की क्षमता, हमारे सोचने समझने की शक्ति,
और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है।
बिल्कुल। अगर आप थके हुए हैं, बीमार महसूस कर रहे हैं, तो ना आप ठीक से काम कर पाएंगे, ना अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे।
सही कहा।
ब्लूम व्यायाम, अच्छा खान पान और पूरी नींद को सिर्फ अच्छी आदतें नहीं मानते।
अच्छा, तो क्या मानते हैं?
वो इन्हें दौलत बनाने वाली गतिविधियां कहते हैं। वो इसे ऊर्जा का अर्थशास्त्र का नाम देती हैं। आप अपनी ऊर्जा को कैसे बनाते हैं, कैसे निवेश करते हैं।
वाह, यहाँ जोर टिकाऊ आदतें बनाने पर है। ऐसी आदतें जो लंबे समय तक चले और हमारी शारीरिक संपत्ति को बढ़ाएं, ताकि हम जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
चौथा स्तंभ है मानसिक बौद्धिक संपत्ति, मेंटल इंटेलेक्चुअल वेल्थ। ये सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्रियों के बारे में नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है।
हाँ, बिल्कुल।
इसमें नए हुनर सीखना, समस्याओं को सुलझाने की हमारी क्षमता, दुनिया को समझने के नए नजरिए विकसित करना,
और हाँ, हमारी भावनात्मक समझ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस भी शामिल है।
हमारा दिमाग अद्भुत है, उसमें सीखने की अपार क्षमता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं।
ब्लूम लगातार सीखने, कंटीन्यूअस लर्निंग पर बहुत जोर देती हैं। वो स्किल स्टैकिंग की बात करती हैं।
स्किल स्टैकिंग,
हाँ, यानी एक के ऊपर एक कई तरह के हुनर बनाना जो मिलकर आपको बहुत काबिल बनाते हैं। वो दुनिया को समझने के लिए मेंटल मॉडल्स यानी सोचने के ढांचे विकसित करने की सलाह देती हैं।
जैसे?
जैसे किसी भी फैसले के दूसरे और तीसरे स्तर के परिणामों के बारे में सोचना, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। और हाँ, तनाव को मैनेज करना और अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखना भी इसी का हिस्सा है।
तो ये एक तरह से दिमाग के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा हुआ।
बिल्कुल, ये हमारे दिमाग के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतना ही ज्यादा और बेहतर सीखने की हमारी क्षमता बढ़ती जाती है।
और फिर आता है पांचवा और आखिरी स्तंभ, समय उद्देश्य संपत्ति, टाइम पर्पस वेल्थ। ये थोड़ा अनूठा है और इसके दो हिस्से हैं। पहला है समय, लेकिन ये सिर्फ खाली समय होने के बारे में नहीं है। ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस पर हमारा कितना नियंत्रण है।
हाँ, कंट्रोल।
ब्लूम इसे टाइम सोवरेंटी या समय पर प्रभुत्व कहते हैं। क्या हम तय करते हैं कि हमारा दिन कैसे बीतेगा, या हमारी परिस्थितियां तय करती हैं?
ये बहुत जरूरी सवाल है। हमें अपने समय को प्रभावी ढंग से मैनेज करना सीखना होगा। इसमें काम दूसरों को सौंपना, डेलीगेशन, चीजों को स्वचालित करना, ऑटोमेशन जहां मुमकिन हो,
और शायद सबसे मुश्किल काम, गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखना।
हाँ, वो तो सबसे मुश्किल है। ब्लूम हर गतिविधि का टाइम आरओआई देखने की सलाह देती हैं, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट।
मतलब?
यानी किसी काम में लगाया गया समय कितना सार्थक परिणाम दे रहा है, क्या वो हमारे लक्ष्यों के हिसाब से सही निवेश है।
सोचने वाली बात है।
और इस स्तंभ का दूसरा और शायद ज्यादा गहरा हिस्सा है उद्देश्य,
पर्पस।
पर्पस
इसका मतलब किसी धार्मिक आस्था से नहीं है, बल्कि जीवन में अपने से बड़े किसी मकसद या अर्थ से जुड़ाव महसूस करना है।
ये वो क्यों है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देता है, खासकर जब हालात मुश्किल हों।
इसे हम सचेतनता, माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करके,
कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करके,
प्रकृति में समय बिताकर,
या दूसरों की भलाई के लिए कुछ करके, सर्विस से विकसित कर सकते हैं।
ये हमारे जीवन को एक दिशा देता है, मुश्किल समय में हमें संभालने की ताकत देता है, और हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ को एक बड़े मतलब से जोड़ता है।
अब यहाँ तक तो हमने पांचों स्तंभों को अलग अलग समझा, लेकिन ब्लूम कहती हैं कि असली जादू इन्हें अलग अलग देखने में नहीं है,
बल्कि इन्हें एक साथ साधने में है।
बिल्कुल, इन्हें एक एकीकृत प्रणाली, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में देखना और विकसित करना ही कुंजी है।
अच्छा।
वो इसे संपत्ति एकीकरण प्रणाली, वेल्थ इंटीग्रेशन सिस्टम कहती हैं। उन्होंने एक वेल्थ व्हील जैसा मूल्यांकन टूल भी सुझाया है।
वेल्थ व्हील?
हाँ, जिससे हम देख सके कि हम इन पांचों क्षेत्रों में कहाँ खड़े हैं, कहाँ कमी है, कहाँ हम ठीक कर रहे हैं।
यहाँ तालमेल या सिनर्जी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये देखना है कि कैसे एक क्षेत्र में किया गया निवेश दूसरे क्षेत्रों को भी बढ़ावा देता है।
जैसे अगर हम पैसे, वित्तीय संपत्ति का इस्तेमाल अच्छी सेहत, शारीरिक संपत्ति के लिए करते हैं, मान लीजिए जिम ज्वाइन करते हैं या बेहतर खाना खाते हैं,
तो उससे मिली ऊर्जा हमें काम पर ज्यादा फोकस करने, मानसिक संपत्ति और रिश्तों को बेहतर निभाने, सामाजिक संपत्ति में मदद करती है।
बिल्कुल, संतुलन साधना जरूरी है। हमें एक चीज के लिए दूसरी को कुर्बान करने से बचना है।
हाँ, जैसे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सेहत या रिश्तों को नजरअंदाज कर देना, ये आम है।
बहुत आम है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े विचार या संदेश उभर कर आते हैं।
जी।
पहला और सबसे जरूरी तो यही है कि हमें सफलता की पारंपरिक सिर्फ पैसों वाली परिभाषा को चुनौती देनी होगी।
हाँ, उसे बदलना होगा।
सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि जीवन के इन सभी पांचों आयामों में संतुलन और समृद्धि है।
दूसरा बड़ा संदेश ये है कि ये पांचों संपत्तियां आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह।
हाँ।
एक में किया गया निवेश अक्सर दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है, और एक में कमी बाकियों को भी नीचे खींच सकती है। इन्हें अलग अलग खानों में रखकर नहीं देखा जा सकता।
तीसरा, इन सभी क्षेत्रों में लगातार छोटे छोटे प्रयास करने का चक्रवृद्धि प्रभाव, कंपाउंड इफेक्ट होता है।
बिल्कुल।
जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा नियमित रूप से निवेश करने पर समय के साथ बड़ी दौलत बन जाती है, वैसे ही रोज थोड़ा व्यायाम करना, रोज कुछ नया सीखना, रोज अपने रिश्तों को समय देना,
ये छोटी छोटी आदतें लंबे समय में जीवन की गुणवत्ता में बड़ा फर्क ला सकती हैं।
ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं, ये एक लंबी दौड़ है।
चौथा, इरादतन जीवन जीना, इंटेंशनल लिविंग,
मतलब
यानी अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर चलाने के बजाय सचेत रूप से ये तय करना कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और उसी के अनुसार हमारे समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करना।
दूसरों की उम्मीदों या समाज के दबाव में बहने के बजाय अपने मूल्यों के हिसाब से जीना।
बिल्कुल। पांचवा, एक टिकाऊ सस्टेनेबल दृष्टिकोण अपनाना। हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जो लंबे समय तक चलें।
मिसाल के तौर पर हफ्ते में 80 घंटे काम करके बहुत पैसा कमाना शायद कुछ समय के लिए मुमकिन हो, लेकिन क्या ये टिकाऊ है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इससे हमारी सेहत, हमारे रिश्ते या हमारी मानसिक शांति पर बुरा असर नहीं पड़ेगा?
पड़ेगा ही।
हमें ऐसे संतुलन बनाने होंगे जो लंबे समय तक कायम रह सकें।
और शायद सबसे बड़ा लक्ष्य, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, स्वतंत्रता, फ्रीडम हासिल करना है।
हाँ,
इन सभी संपत्तियों का असली मकसद हमें जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव करने की आजादी देना है। हम अपना समय कैसे बिताएं, किसके साथ बिताएं, क्या काम करें, क्या सीखें,
अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें और अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करें।
बिल्कुल। और अंत में जब हम इन सभी पांचों क्षेत्रों में संतुलन और समृद्धि हासिल करते हैं तो हम न केवल एक ज्यादा संतोषजनक और खुशहाल जीवन जीते हैं
बल्कि हम एक सार्थक विरासत छोड़ने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की बेहतर स्थिति में होते हैं।
इस पूरी अवधारणा में कई बातें ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ, कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर थोड़ी और बात की जा सकती है।
हाँ, जैसे एक बहुत शक्तिशाली विचार है, सच्ची दौलत ये चुनने की आजादी है कि आप अपने दिन का हर घंटा कैसे बिताते हैं।
उफ, ये सीधे सीधे स्वायत्तता की बात है।
दौलत का मतलब चीजें इकट्ठा करना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेना है।
एक और विचार जो मुझे बहुत पसंद आया, आप समय खरीद नहीं सकते लेकिन अपना समय वापस जरूर खरीद सकते हैं।
हाँ,
कितना गहरा मतलब है इसका। हम पैसे या दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल उन कामों से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं या हमें पसंद हैं,
ताकि हम वो समय उन चीजों में लगा सकें जो वाकई मायने रखती हैं, सीखना, रिश्ते निभाना, सेहत का ध्यान रखना।
और रिश्तों के बारे में ये बात बहुत सच्ची लगती है। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ बढ़ा सकता है लेकिन आपके रिश्ते आपके जीवन की कीमत तय करते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि हजारों ऑनलाइन कनेक्शंस होना शायद करियर में मदद करे लेकिन जीवन में असली सहारा और खुशी
वो गहरे भरोसेमंद रिश्तों से ही मिलती है। सतहीपन और गहराई का फर्क समझना जरूरी है।
सेहत के बारे में ये कहना कि शारीरिक स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है, इसे प्राथमिकता देने की अहमियत बताता है।
हाँ, अगर नींव ही डगमगा रही हो तो जीवन की बाकी इमारतें कैसे मजबूत रहेंगी।
और आखिर में पैसे के प्रति हमारा नजरिया बदलने वाली बात, वित्तीय धन एक स्कोर कार्ड नहीं बल्कि एक उपकरण है।
बिल्कुल। पैसा सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि हम कितने सफल हैं,
बल्कि ये एक साधन है जिसका इस्तेमाल हम एक बेहतर, ज्यादा संतुलित और सार्थक जीवन बनाने के लिए कर सकते हैं।
तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इन सब अच्छी बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे।
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
क्या ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं या इन्हें वाकई अपनाया जा सकता है?
बिल्कुल अपनाया जा सकता है। पहला कदम हो सकता है एक संपत्ति ऑडिट करना।
अच्छा।
ईमानदारी से खुद से पूछे, मैं इन पांचों क्षेत्रों में अभी कहाँ हूँ, कहाँ मेरी स्थिति अच्छी है और कहाँ मुझे और ध्यान देने की जरूरत है।
शायद एक डायरी में या कागज पर इसे लिखने से शुरुआत की जा सकती है।
हाँ, समय के लिए एक हफ्ते तक ध्यान दे कि आपका समय जा कहाँ रहा है।
ट्रैक करें।
हाँ, ट्रैक करें। क्या आप फोन पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं? क्या ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें जाना जरूरी नहीं? कहाँ आप ना कह सकते हैं?
कहाँ आप काम किसी और को सौंप सकते हैं ताकि आपका समय बचे? ये छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं।
हाँ, रिश्तों में निवेश करने के लिए जानबूझकर समय निकालें,
कैलेंडर में डालें।
हाँ, अपने कैलेंडर में दोस्तों या परिवार के साथ मिलने का समय तय करें, जैसे आप किसी जरूरी काम की मीटिंग तय करते हैं,
या फोन उठाकर बात कर लें या छोटा सा मैसेज भेज दें। ये छोटे प्रयास रिश्तों को ताजा रखते हैं।
करियर के फैसले लेते समय सिर्फ सैलरी या ओहदा न देखें।
तो क्या देखें?
सोचें कि ये नौकरी या प्रोजेक्ट आपकी बाकी संपत्तियों पर कैसा असर डालेगा। क्या आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा? मानसिक संपत्ति।
क्या आपके पास अपनी सेहत और परिवार के लिए समय बचेगा?
शारीरिक और सामाजिक संपत्ति।
क्या ये काम आपको अपने जीवन के उद्देश्य के करीब ले जाएगा?
समय उद्देश्य संपत्ति।
और जब आप अपना बजट बनाए तो सिर्फ बचत और निवेश के बारे में न सोचें।
हाँ,
अपने बजट में सेहत, अच्छा खाना, एक्सरसाइज क्लास, सीखने, किताबें, ऑनलाइन कोर्स, रिश्तों, दोस्तों के साथ बाहर जाना, छोटे तोहफे
और हाँ, अपना समय वापस खरीदने, जैसे घर के काम में मदद लेना, के लिए भी थोड़ी जगह बनाए, ये भी एक तरह का निवेश ही है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि समृद्धि या संपन्नता वो एक बहुआयामी चीज है,
मल्टी डायमेंशनल। हाँ, सिर्फ एक चीज जैसे पैसा के पीछे भागते रहने से हम जीवन के दूसरे जरूरी हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं।
हाँ,
सच्ची टिकाऊ दौलत के लिए इन सभी पांचों आयामों, वित्तीय, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और समय उद्देश्य में सचेत प्रयास और संतुलन साधना जरूरी है।
और दूसरी बड़ी सीख इन सभी संपत्तियों के बीच का गहरा रिश्ता है, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं।
हाँ, इंटरकनेक्टेड।
एक में सुधार अक्सर दूसरों में भी सुधार लाता है, जिससे एक शक्तिशाली चक्रवृद्धि प्रभाव पैदा होता है। ये हमें कमी की सोच, स्कैसिटी थिंकिंग, कि मेरे पास पर्याप्त समय या पैसा या ऊर्जा नहीं है, से निकालकर प्रचुरता की सोच, अबंडेंस थिंकिंग की ओर ले जाता है।
कि हाँ, मैं इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास कर सकता हूँ।
बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी सफलता पाने का नुस्खा नहीं है, बल्कि एक गहरा, संतोषजनक और सार्थक जीवन जीने का नक्शा बनाने जैसा है।
मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे वित्तीय संपत्ति को बाकी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पैसे को सिर्फ जमा करने की चीज मानने के बजाय उसे एक ज्यादा सक्रिय और सकारात्मक भूमिका देता है।
और मेरे लिए समय उद्देश्य संपत्ति वाला हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा, खासकर समय पर प्रभुत्व या टाइम सॉवरेनिटी का विचार।
हाँ,
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सोचना कि हम अपने समय के मालिक कैसे बने और उसे किसी बड़े उद्देश्य से कैसे जोड़ें, ये वाकई बहुत जरूरी लगता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।